आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने प्रदेश विधानसभा में आज 2025-26 के लिए पेश किया 24,496 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट। सदन में वंदे मातरम पर भी हुई चर्चा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कोडीन कफ सिरप मामले में दोषियों पर होगी सख्त कार्रवाई, विपक्ष का हंगामा। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में 15,189 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव को मिली मंजूरी। मिर्जापुर, हरदोई और गौतमबुद्ध नगर सहित 9 जिलों में स्थापित होंगी औद्योगिक इकाइयां। और पहाड़ों पर बर्फबारी के चलते प्रदेश के अधिकांश जिले ठंड और कोहरे की चपेट में। हवाई, रेल और सड़क यातायात प्रभावित, कई जिलों के स्कूलों में अवकाश घोषित। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं श्वेता उपाध्याय और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश के वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने आज विधानसभा में वित्त वर्ष 2025-26 के लिए 24,496 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट पेश किया है। वित्त मंत्री ने बताया कि औद्योगिक विकास के लिए 4,874 करोड़, ऊर्जा क्षेत्र के लिए 4,521 करोड़ रुपए, स्वास्थ्य परिवार कल्याण के लिए 3,500 करोड़ रुपए और नगर विकास के लिए 1,758 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश रेवेन्यू सरप्लस स्टेट बना है और बजट में जीएसडीपी भी बढ़ा है।
आज जो मैं प्रस्तुत कर रहा हूं, ये 24,496.98 करोड़ रुपए का है। इसमें राजस्व लेखे का व्यय 18,369.30 करोड़ रुपए तथा पूंजी लेखे का व्यय 6,127.68 करोड़ रुपए है। ये प्रस्तावित अनुपूरक बजट का आकार इस वर्ष मूल बजट का 3.03% है। इसमें विशेष रूप से जो हमारे सामने मुख्य मुख्य बातें हैं उसके ऊपर फोकस करना चाहता हूँ। खासतौर से इसमें इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए 4,874 करोड़ रुपए, पावर सेक्टर में 4,521 करोड़ रुपए, हेल्थ एवं फैमिली वेलफेयर में 3,500 करोड़ रुपए, नगर विकास में 1,758.56 करोड़ रुपए और टेक्निकल एजुकेशन में 639.96 करोड़ रुपए। इसके अलावा वीमेन चाइल्ड वेलफेयर इसमें 535 करोड़ रुपए, नेडा में 500 करोड़ रुपए तथा मेडिकल एजुकेशन में 423.10 करोड़ रुपए और गन्ना और चीनी मिल में 400 करोड़ रुपए। ये मुख्य मुख्य बातें हैं।
विधानसभा में शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन आज प्रश्नकाल के दौरान विपक्ष ने कोडीन कफ सिरप के मुद्दे को लेकर हंगामा किया। नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे ने इस मुद्दे पर चर्चा कराए जाने की मांग की, जिसके बाद सपा के सभी सदस्य नारेबाजी करते हुए वेल में आ गए तथा सरकार के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। सपा सदस्य अतुल प्रधान द्वारा कोडीन सिरप का मामला उठाए जाने पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जवाब देते हुए कहा कि कोडीन सिरप से प्रदेश में किसी की मौत नहीं हुई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस मामले में 134 स्थानों पर छापेमारी की गई और 79 FIR दर्ज की गई। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस मामले में संलिप्त किसी को बख्शा नहीं जाएगा।
कोडीन कफ सिरप का मुद्दा जो इन्होंने उठाया है, मुद्दा था नकली दवाओं के सेवन के कारण होने वाली मौतों का, और उसके बारे में हमने पहले ही बताया है कि नकली दवा के कारण होने वाले मौत के प्रकरण की कोई भी बात अभी तक शासन के संज्ञान में नहीं आई है और समय समय पर FSDA विभाग इसको लेकर के छापेमारी करती है, कार्रवाई करती है। यूपी के अंदर कोडीन कफ सिरप इसके केवल स्टॉकिस्ट हैं, होलसेलर है, इसका यहाँ पे प्रोडक्शन नहीं होता है। ये कार्रवाई सरकार ने की है और सरकार ने इसके लिए 79 अभियोग अब तक दर्ज किए हैं। इसमें 225 अभियुक्तों को इसमें नामजद किया है, 78 अभियुक्त अब तक गिरफ्तार हुए हैं, 134 फार्म पर एक छापेमारी की कार्रवाई हुई है।
मुख्यमंत्री के जवाब से असंतुष्ट सपा के सदस्यों ने सदन से वॉकआउट किया। इससे पूर्व सपा के सदस्य समरपाल सिंह ने प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाली का प्रश्न उठाया। इस पर उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि सभी अस्पतालों में निशुल्क उपचार और दवाएं पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं। इसके अलावा मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष से उपचार के लिए लोगों को 1,300 करोड़ रुपए दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार स्वास्थ्य सेवाओं के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है। विधानसभा में आज वंदे मातरम पर भी चर्चा शुरू हुई। नेता सदन और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वंदे मातरम की विशिष्टताओं और इसकी प्रासंगिकता पर विस्तार से चर्चा करते हुए कहा कि वंदे मातरम केवल अतीत की स्मृति न रहे बल्कि हम सबके लिए भविष्य का संकल्प भी बने।
वंदे मातरम की जब हम बात करते हैं तो वास्तव में यह हम सबके लिए कैसे अंतःकरण से हर भारतीय को एक नई दिशा देता है। यह भाव हमारी भावनाओं के साथ साथ हमारे कर्तव्यों में भी झलकता हुआ दिखाई देता है। हम लोग इस बात को मानते हैं कि वंदे मातरम का अर्थ केवल मातृभूमि को प्रणाम करना नहीं बल्कि यह वचन देना है कि हम उसकी रक्षा करेंगे, उसे समृद्ध और गौरवान्वित बनवाएंगे।
वंदे मातरम पर हुई चर्चा में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, कांग्रेस की आराधना मिश्रा मोना, सपा के वरिष्ठ नेता शिवपाल यादव और जनसत्ता लोकतांत्रिक दल के रघुराज प्रताप सिंह सहित अन्य दलीय नेताओं ने हिस्सा लिया। उधर विधान परिषद में विपक्ष ने पुरानी पेंशन बहाली, शिक्षण संस्थाओं से अधिक बिजली बिल वसूली और किसानों की बदहाली का मुद्दा उठाया। पुरानी पेंशन बहाली के समाजवादी पार्टी के डॉ. मानपाल सिंह यादव के प्रश्न पर सरकार ने कहा कि 1 अप्रैल 2005 से नई पेंशन प्रणाली लागू की गई है। बिजली बिल वसूली मामले पर ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने कहा कि विद्युत नियामक आयोग बिजली की दरें तय करता है, वहां आप अपील कर सकते हैं। वहीं किसानों के मुद्दे पर कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कहा कि किसान हमारी सरकार की प्राथमिकता में शामिल हैं। ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आज लखनऊ में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में 15,189 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है। औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी ने बताया कि प्रदेश को $1 ट्रिलियन इकोनॉमी वाला राज्य बनाने के लिए मिर्जापुर, हरदोई, बुलंदशहर, रायबरेली, गौतमबुद्ध नगर, सोनभद्र, मेरठ, मुजफ्फरनगर और अलीगढ़ जनपद में 15,189 करोड़ की लागत से मेगा एवं सुपर मेगा श्रेणी में उद्योग स्थापित करने के लिए 12 औद्योगिक इकाइयों को LOC जारी की जाएगी। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने आज फतेहपुर में सरस्वती बालिका विद्या मंदिर के नवनिर्मित भवन का लोकार्पण किया और आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों को किट वितरित की। इसके बाद राज्यपाल ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में सप्त शक्ति संगम कार्यक्रम में महिलाओं को संबोधित किया। श्रीमती पटेल ने कहा कि कुरीतियों को दूर करने के लिए महिलाओं को शिक्षित करना जरूरी है।
30% से ज्यादा महिलाएं वह जेल काट रही है, उसका कारण वही है कि उसने दहेज मांगा, दहेज नहीं मिला। तो ऐसे जो बीमारियां समाज में है वो बीमारियां दूर करने के लिए मुझे लगता है कि शिक्षा इतनी इम्पोर्टेंट है।
लखनऊ के बाद अब प्रयागराज डाक परिक्षेत्र में प्रधान डाकघर की ओर से इलाहाबाद विश्वविद्यालय में प्रदेश का दूसरा जेन जी पोस्ट ऑफिस खोला जा रहा है। यह डाकघर छात्रों, शोधार्थियों और विश्वविद्यालय परिवार को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है। प्रधान डाकघर के प्रवर डाक अधीक्षक सुशील कुमार तिवारी ने बताया कि जेन जी पोस्ट ऑफिस पूरी तरह आधुनिक होगा।
हमारी जो प्रयागराज पोस्टल डिवीजन है वो एक जनरेशन जेन जी के तहत पोस्ट ऑफिस आइडेंटिफाई किया है जो प्रयागराज यूनिवर्सिटी में। इस पोस्ट ऑफिस में हम लोग जो पोस्ट ऑफिस तो पहले से ही थी लेकिन उसको हम लोग मॉडर्नाइजेशन करके उसको जेन जी को जोड़ने के लिए वहाँ पे अत्याधुनिक सुविधाएं और जो नेक्स्ट जनरेशन की डिमांड है उस हिसाब से पोस्ट ऑफिस को डेवलप किया जा रहा है। वहाँ पे कैफेटेरिया होगी, पानी और छोटी मोटी चीजें, लाइब्रेरी से संबंधित चीजें होंगी जहाँ पे बच्चे अपने लीजर टाइम भी बिता सकते हैं और पोस्ट ऑफिस में जो प्रोडक्ट है उसके बारे में जानकारी करके अपने को कनेक्ट कर सकते हैं।
पहाड़ों पर बर्फबारी के चलते प्रदेश के कई जिले ठंड और घने कोहरे की चपेट में हैं। कोहरे के चलते दृश्यता कम होने के कारण हवाई, रेल और सड़क यातायात पर असर पड़ा है। वहीं ठंड और कोहरे के कारण स्कूलों में पठन पाठन प्रभावित हो रहा है। फर्रुखाबाद, रायबरेली और अम्बेडकर नगर में जिला प्रशासन ने 12वीं तक के सभी विद्यालयों में कल तक के लिए अवकाश घोषित किया है। मौसम विभाग ने पश्चिमी और पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में आगामी 2 दिनों के लिए घने कोहरे का येलो अलर्ट जारी किया है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने प्रदेश विधानसभा में आज 2025-26 के लिए पेश किया 24,496 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट। सदन में वंदे मातरम पर भी हुई चर्चा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कोडीन कफ सिरप मामले में दोषियों पर होगी सख्त कार्रवाई, विपक्ष का हंगामा। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में 15,189 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव को मिली मंजूरी। मिर्जापुर, हरदोई और गौतमबुद्ध नगर सहित 9 जिलों में स्थापित होंगी औद्योगिक इकाइयां। और पहाड़ों पर बर्फबारी के चलते प्रदेश के अधिकांश जिले ठंड और कोहरे की चपेट में। हवाई, रेल और सड़क यातायात प्रभावित, कई जिलों के स्कूलों में अवकाश घोषित। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा।